प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 24 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने श्रीनिवास रामानुजन जी की जीवन की आपके सामने दो तीन झलकियां पेश की थी और खासकर आपने महसूस किया होगा कि जानबूझकर मैंने ऐसा किया था कि उन झलकियों में मैंने रामानुजन जी के सामने जो गंभीर परिस्थितियां थी खासकर उन्हें आपके समक्ष रखा था। उसके पीछे पर्पस था, मेरा पर्पस ये था कि किस तरीके से हमारी जो परिस्थितियां होती हैं डेफिनेटली वो हमें गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो हमें तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल पंगु बना दें, और फिर किस तरीके से हमारे अंदर की जो एक इच्छा शक्ति होती है या जिजीविषा होती है या उन परिस्थितियों से लड़ने का मादा होता है, या आप यूं कह लीजिए कि उन्हें मैनेज करने की टेक्निक हम जानते हैं या उनकी उपेक्षा कर देने का साहस हम अपने अंदर पाले रखते हैं और फिर हम उन पर विजय प्राप्त करके अपनी यात्रा को लगातार जारी रखते हैं। हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम यात्रा जारी रखें यह तो कम से कम हमारे हाथ में होता ही है। दोस्तों, उसी बात को मैं आज एक दूसरे सच्ची कथा के माध्यम से आगे बढ़ाने जा रहा हूं, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत से मेल आते हैं, मेरी अपनी भी जिंदगी है, आप सबकी अपनी अपनी जिंदगियां हैं, बहुत दूसरों को भी हम लोग देखते हैं, मतलब सच पूछ मैंने इतनी सारी बायोग्राफीज पढ़ी भी हैं, मुझे अभी तक एक भी जीवन ऐसा नहीं मिला है जो समस्याओं से घिरा हुआ ना हो, चाहे वो अभी जीवंत यानी कि जीवित व्यक्ति हो, चाहे वो अतीत के काल के गर्भ में क्यों न समा गए हो जिन्हें हम किताबों के जरिए जानते हैं। हर व्यक्ति परिस्थितियों से जूझता रहा है, फिर हम क्या करें? क्या हम परिस्थितियों के बेहतर होने की प्रतीक्षा करते रहें कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे? समय तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता ना, आप और हम प्रतीक्षा करते रह जाएं उससे क्या होगा, वो तो गुजरता चला जाएगा और हमारा जो वक्त का खजाना है वो धीरे 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 खाली होता जाएगा और पता लगा कि एक दिन हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं, हमारे पास कहने के लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और फिर तब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। यहां मैं अब आपको एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूं जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई है। आप सचिन तेंदुलकर जी की बायोग्राफी पढ़ करके देखिए, जीवनी पढ़ करके देखिए कि किस तरह की परिस्थितियां थी, और फिर जब उनका उनकी टीम हारती थी या सचिन तेंदुलकर जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे तो उनके साथ क्या बीतती थी। आपने सुना होगा कि किस तरीके से उनके घरों पर पत्थर फेंके जाते थे, मतलब जिसे क्रिकेट का भगवान कह रहे हैं, एक असफलता दो असफलता पर आप उनके घर की खिड़कियों को अपने पत्थरों से तोड़ना चाहते हैं, तो वो सब भी वही सचिन तेंदुलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर कल्पना करके देखिए कि जब वो दोबारा खेलने जाते होंगे, अपने घर पर पत्थर पड़ते हुए देखने के बाद जब वो मैदान में उतरते होंगे तो उनके दिमाग में कितना जबरदस्त तनाव दबाव रहता होगा, और यहां तक कि वो इमोशनल कहीं ना कहीं जकड़न में भी रहते होंगे। इमोशनल जकड़न में इस मायने में कि अगर मैं इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, फिर से घर पे पत्थर पड़ेंगे, क्या होगा, सोच करके देखिए। और वो जानते हैं कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मेरे चाहने वाले मुझे देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने चाहने वालों को निराश कर दूं, मतलब कितने दबाव में वो खेल रहे होंगे, कल्पना करके देखिए। थोड़ा सा महसूस करना शुरू कीजिए, जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो अपने अंदर उन घटनाओं को उतारिए या फिर उन घटनाओं में उतरने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के सही मायने में आप उन घटनाओं का एक सच्चा ईमानदार उपयोग अपने लिए कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर हम सब किस्से कहानी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इंटरटेनमेंट हुआ, मजा आया, और इसके बाद फिर भूल जाते हैं, उसका कोई बहुत ही सकारात्मक इंपैक्ट हमारी लाइफ पर नहीं पड़ पाता। तो उसमें एक छोटी सी घटना है सचिन तेंदुलकर जी से जुड़ी हुई, और यह घटना है 2004 की, और मैंने यह रेफरेंस नोट किया है 2010 मार्च 2010 तक की। अब आप देखिए कि वो घटना क्या है कि 2004 में ऑस्ट्रेलिया के जो एक ब्रेड हॉग जो बॉलर थे उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, राइट। आउट करने के बाद हॉग उसी बॉल को लेकर के आया जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, और उस बॉल को सचिन तेंदुलकर को थमाते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोग्राफ प्लीज, इस पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। अब आप देखिए कि कितनी, मतलब अगर आप इसे नकारात्मक रूप में लेंगे तो सचिन तेंदुलकर के लिए चिढ़ जाने वाली बात है कि मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा है कि देखो इसी बॉल से मैंने तुमको आउट किया है। लेकिन अगर आप सकारात्मक रूप से लेंगे तो ये ब्रेड हॉग के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। वैसे तो पता नहीं कितनों को आउट करता होगा, नहीं, मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया है और इस बॉल के जरिए आउट किया है, इस बॉल से आउट किया है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस बॉल को वो अपनी जिंदगी के एक बहुत अमूल्य विरासत के तौर पर रखना चाह रहा है, धरोहर के रूप में उसे रखना चाह रहा है। तो ये उसका सकारात्मक पक्ष है। खैर, सचिन तेंदुलकर ने बकायदे उस पर ऑटोग्राफ दिए और ऑटोग्राफ देते हुए उन्होंने एक वाक्य कहा। वो वाक्य बहुत खूबसूरत वाक्य है, बहुत छोटा सा, बहुत सरल, बहुत सीधा साधा, लेकिन बहुत प्रभावशाली। और उन्होंने ऑटोग्राफ देते हुए और उस पर ये लिखा अब ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, इट विल नेवर हैपन अगेन, अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये उसमें उन्होंने लिखा कि ठीक है, एक बार तुमने आउट कर लिया, अब तुम मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे। और मित्रों, जो मैंने नोट किया है, मार्च 2010 तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं कर पाया, यानी कि उसे कभी यह मौका नहीं मिला कि वह मौका मिला मतलब इतनी कहना चाहिए, लेकिन उसे यह सफलता दोबारा नहीं मिल पाई। अब एक छोटी सी घटना है, देखिए सामान्य रूप में सुन करके आप इस घटना को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहां जो विचार करने की बात है मित्रों, वो ये कि आखिर सचिन तेंदुलकर ने जो हॉग को एक वचन दिया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, उस समय तैश में आकर सामान्य रूप में भी यह बात कही जा सकती थी कि अब तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे, या लिख भी दिया जा सकता था और उसे भूला जा सकता था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, उसे निभाया। तो ये जो निभाने की बात आती है, यही तो वह बात है जो अलग अलग लोगों की जिंदगियों में फर्क पैदा करती है। कहते बहुत लोग हैं, वचन बहुत लोग देते हैं, संकल्प लेते हैं, कसमें खाते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो इन सब किए गए वायदों, संकल्पों और कसमों को निभा पाते हैं। वे क्यों नहीं निभा पाते? वो इसलिए नहीं निभा पाते कि जब वे कह रहे थे तो उनके कहने में कोई ईमानदारी नहीं थी, उन्होंने कोई ये बात बहुत सोच विचार कर नहीं कही, बस एक तैश में आ गए, उस समय जोश में आ गए, इमोशनली चार्ज्ड हुए और मुंह से वाक्य निकल गया कि ठीक है हम ऐसा करेंगे या ऐसा कभी नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। यानी कि उन्होंने जो बात कही उसे उन्होंने अपने कॉन्शस में दर्ज ही नहीं किया, वो तो केवल ऊपरी सतह पर रह गया और जैसे जैसे समय बीतता चला गया वो भूल भी गए। आप उन्हें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, अच्छा ऐसा मैंने कहा था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैंने ऐसा कहा होगा, बच गए। याद आ रहा है इसके बावजूद कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता, देखिए। यानी कि वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूल गए। सचिन तेंदुलकर जैसे लोग जो क्रिकेट के भगवान बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि वो जो कहते हैं उसे हमेशा याद रखते हैं, खासकर बड़ी चीजों को तो हमेशा याद रखते हैं, वो अपने दिमाग में उसे दोहराते रहते हैं। और याद कीजिए कि कल मैंने रामानुजन जी के बारे में बताया था कि वो कहते थे कि मेरी कुलदेवी स्वप्न में मुझे आती हैं और गणित के सूत्र बताती हैं। तो बेसिकली ठीक है, अब इसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं और सबको अधिकार भी है और करना भी चाहिए, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है, लेकिन आप इसे एक प्रकार से उनके सबकॉन्शियस माइंड की आवाज भी कह सकते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आती कहां से है? जब आपके दिमाग में, आपके स्मरण में वह बात बनी रहती है। सामान्य बादल नहीं बरसते, लेकिन जब ढेर सारे बादल इकट्ठे होते जाते हैं तो उनका रंग जब एकदम काला हो जाता है तो वो बादल बरस जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी मानसिक स्थिति भी होती है कि जिन चीजों को हम लगातार स्मरण में रखते हैं वो चीजें लगातार घनीभूत होती चली जाती हैं, फिर वो हमारे ऊपर दबाव डालती हैं कि नहीं, आपको इसे निभाना है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, आपने ये कहा है, आप फिर उसे भूलते नहीं हैं। और जो अंदर का फिर एक दबाव है, जो एक प्रेशर आपकी चेतना पर बनता है, दिमाग पर बनता है, वह सीधे सीधे हमें एक्शन की तरफ ले जाता है, हम कर्म में उसे परिणित कर देते हैं और बात खत्म हो जाती है। जैसे ही वो कर्म में आया, कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी ही, बदलाव स्वाभाविक है, बदलाव होंगे ही होंगे। तो मित्रों, ये मैंने सचिन तेंदुलकर जी के इस छोटे से खूबसूरत हिस्से के जरिए आप लोगों के सामने लाइफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें रखने की कोशिश की हैं। आप सब भी इन पर विचार करें और अपने अपने ढंग से इसका उपयोग करें। यही सच पूछे तो इस प्रोग्राम की सार्थकता भी होगी। तो फ्रेंड्स, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।